नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के नेताओं ने नए अध्यक्ष को बधाई दी। भारत ने वर्तमान वैश्विक संघर्षों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में संयुक्त राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधारों पर बल दिया। केन्या में नए कर प्रस्तावों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस कार्रवाई में 5 लोगों की मौत। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है। और तैराकी में धीनिधि देसिंघु तथा श्रीहरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भाजपा सांसद ओम बिरला ध्वनिमत से आज 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। श्री बिरला पिछले लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। अपने संबोधन में श्री बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद के रूप में श्री बिरला के कार्य नए सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया।
स्पीकर सर, आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेसफुल इलेक्शन फॉर द सेकंड टाइम दैट यू हैव बीन इलेक्टेड। आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑपोजिशन। दिस हाउस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडियाज पीपल एंड यू स्पीकर सर आर द फाइनल आर्बिटर।
समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता अध्यक्ष की एक प्रमुख विशेषता है और उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्यों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा।
आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने 17वीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानून को उचित चर्चा के साथ सदन में पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले ने निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि सदन के सदस्यों को निलंबित करने के बजाय अधिक से अधिक चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है और अब सदस्यों को जनता की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल नेता अभय सिन्हा, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, वाईएसआर कांग्रेस के मिथुन रेड्डी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे, एआईएमआईएम के अजदुद्दीन ओवैसी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। गृहमंत्री अमित शाह ने ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए श्री बिरला की अनुकरणीय प्रतिबद्धता भारतीय संविधान की महिमा और इसमें निहित मूल्यों को मजबूत करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक भी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, कृपया से फिर से सुन लें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों ने आज 1975 में आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ सांसदों ने तख्तियां दिखाते हुए नारे लगाए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह एक बैठक बुलाई थी और आपातकाल लगाया था। आज हमने सदन में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी घटना कभी नहीं दोहराई जाएगी और संविधान को कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कथित आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी। श्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ को बताया कि वह उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकनायक अस्पताल में दिल्ली की जलमंत्री आतिशी से मुलाकात की। सोमवार को भूख हड़ताल के कारण आतिशी का शुगर लेवल कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा से अधिक पानी की मांग को लेकर इस महीने की 21 तारीख को शुरू हुई भूख हड़ताल उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद खत्म कर दी गई। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी दिल्ली में पैदा हुआ जल संकट आम आदमी पार्टी के नेताओं की साजिश का नतीजा है। नागालैंड में आज शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। नागालैंड में पहली बार नगरपालिका चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। दिन में 11 बजे तक मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 27.01%, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 18.31%, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 24.17% मतदान हुआ, जबकि नाशिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23.16% मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश में इस वर्ष सितम्बर तक विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। नीट परीक्षा घोटाले की जांच के लिए एक केंद्रीय दल महाराष्ट्र के बीड पहुंच गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार टीम ने जिले के मजलगांव तालुका के कुछ शिक्षकों से पूछताछ की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों का विस्तार करके सुरक्षा परिषद में सुधार करने का अब समय आ गया है, ताकि ये संस्था वैश्विक संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है।
Only this can enable the Council to manage effectively today's conflicts around the globe as well as the increasingly complex and interconnected global challenges the world faces today.
केन्या में प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद भवन पर हमले और उसका एक हिस्सा जलाए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई में 5 प्रदर्शनकारी मारे गए। संसद द्वारा एक वित्त विधेयक को पारित किए जाने के बाद देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विधेयक के जरिए सरकार ने कई करों में वृद्धि की है। दुनिया के कई देशों ने केन्या में हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस को विश्व औषधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष का विषय है साक्ष्य से स्पष्ट है रोकथाम में निवेश आवश्यक। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को अपनाए गए एक प्रस्ताव में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अपने दृढ़ संकल्प को बताते हुए हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा नशे के आदि लोगों के लिए 342 से अधिक एकीकृत पुनर्वास केंद्र भी बनाए गए हैं। नशा छोड़ने में मदद करने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14446 भी शुरू किया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल जैसी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
तैराकी में धीनिधि दिसिंघु और श्री हरि नटराज ने यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस संबंध में भारतीय तैराकी महासंघ ने घोषणा की। फरवरी में 14 वर्षीय धीनिधि ने फिलीपींस में आयोजित 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। धीनिधि महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर, भारत और मलेशिया में आयोजित स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। वहीं 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक शीर्ष तैराक नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कल तक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिन तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में भी ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब में आज भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के नेताओं ने नए अध्यक्ष को बधाई दी। भारत ने वर्तमान वैश्विक संघर्षों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने में संयुक्त राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधारों पर बल दिया। केन्या में नए कर प्रस्तावों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस कार्रवाई में 5 लोगों की मौत। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है और तैराकी में धीनिधि दिसिंघु तथा श्रीहरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।